மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌசமோகணி மங்களம் குந்த குந்தாரியோ ஜைன தர்மோஸ்து மங்களம் ஆத்மா ஞானம் ஸ்வயம் ஞானம் ஞானாதன்யத் கரோதி கிம் பரபாவஸ்ய கர்த்தாத்மா மோஹோய வியவஹாரிணாம் அஜ்ஞானதிமிராந்தானாம் ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமஹ. நிமித்த உபாதான் கி சர்ச்சா ஹமாரி சல் ரஹி ஹை. நிமித்த உபாதான் யே தோனோ ஹி காரண கே நாம் ஹை. ஜப் ஜப் காரிய ஹோதா ஹை तब तब वह कार्य किसी कारण के हेतु से, कारण के कारण यानी किसी कारण से कार्य होता है, यानी जब जब कार्य होता है तब तब वहां कार्य होता ही होता है, सॉरी कारण होते ही होते हैं। तो ये कारण दो प्रकार के हमने देखे थे, एक तो निमित्त कारण और एक उपादान कारण। उपादान कारण तो द्रव्य की निज शक्ति होती है और निमित्त कारण यानी वो कोई अन्य पर पदार्थ होता है। तो उसमें हमने देखा था कि कार्य के अन्य अन्य नाम हमने देखे थे कि कर्म है, अवस्था है, हालत, दशा, पर्याय, परिणमन, परिणाम आदि आदि अनेक नाम ये कार्य के लिए ही होते हैं। जब हम निमित्त कारण की अपेक्षा से कार्य को अगर कहना है हमको तो उसको क्या कहते हैं श्रीवेन? नैमित्तिक। उसी कार्य को उपादान की अपेक्षा क्या कहेंगे प्रसन्न जी भाई? उपादान की अपेक्षा से उसका उपादेय बराबर, यानी कार्य एक ही है उसको ही उपादेय कहते हैं, उसी को नैमित्तिक कहते हैं। उपादान की अपेक्षा उसको उपादेय कहते हैं और निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक कहते हैं। अब यह निमित्त कहना किसे और उपादान कहना किसे? तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमता है उसको हमने उपादान कहा, और जो स्वयं कार्य रूप तो नहीं परिणमता परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसको हमने निमित्त कहा था। अभी मैं ही ये सारे दोहराती हूँ, थोड़ी रिवीजन भी हो जाए, आज मंजू बहन भी आई है तो नहीं तो क्या प्रश्नोत्तर में अपना टाइम जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी अपने मन में इसके साथ दोहराना हम ये सारी परिभाषाएं जो है ना, निमित्त क्या, उपादान क्या, उपादेय किसको कहते, निमित्त किसे, ये रोज एक बार हम दोहराएंगे तो एकदम पक्का हो जाएगा। अब हमने देखा था कि उपादान के भी बहुत सारे भेद हैं, तो उसमें त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान ऐसे दो भेद किए। त्रिकाली उपादान तो द्रव्य है, यानी द्रव्य में ही ऐसी शक्ति है, स्वभाव है कि वो कार्य कर सके, तो ये ऐसी शक्ति तो द्रव्य में पड़ी है तो कार्य क्यों नहीं होता है, अनादि इसके पहले ही कार्य होना चाहिए था। तो कहते नहीं, वो क्षणिक उपादान है, उसी से उसी समय कार्य होगा। तो ये क्षणिक उपादान क्या है? तो जो पूर्ववर्ती अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नाम का जो क्षणिक उपादान है वो पूर्ववर्ती पर्याय का अव्यय, और ये जो अभी कार्य हुआ, ये जो पर्याय प्रकृति, उस पर्याय की उसी समय होने की योग्यता, यानी योग्यता को कारण कहा और पर्याय को कार्य कहा। यानी पर्याय होने की योग्यता वो कारण और पर्याय हुई वो कार्य। तो कार्य का नियामक यानी कार्य कभी होगा और कौन सा होगा इसको निश्चित कौन करता है? तो ये क्षणवर्ती, क्षणवर्ती हमने क्षणिक उपादान जो कहा था उसको, यानी उसी को हमने पर्याय शक्ति भी कहा था। और जो त्रिकाली उपादान था उसको क्या नाम दिया था आपको याद है? आपको हाँ, त्रिकाली जो नहीं, इसको हमने क्षणिक उपादान को पर्याय शक्ति कहा, द्रव्य शक्ति। तो जो त्रिकाली उपादान है वो द्रव्य शक्ति है, तो यह निश्चित हुआ कार्य किससे होगा? तो पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति से कार्य होगा। बस इतने से कार्य हो जाएगा नहीं, जब जब ऐसा कार्य होता है तब वहाँ किसी न किसी निमित्त की उपस्थिति किसी नहीं, वो भी निश्चित है, परंतु उस समय निमित्त की उपस्थिति होती है, उपस्थिति होती है, वो कार्य रूप नहीं परिणमता, कार्य में कुछ थोड़ा मदद करे, असर करे, प्रभाव डाले, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपना अपना कार्य कर रहा है, वो अपनी खुद की पर्याय कर रहा है, परंतु वो पर्याय अपने में अनुकूल दिखती है तो हम उसको निमित्त कह देते हैं, क्योंकि निमित्त भी अपने स्वयं के लिए उपादान है कि नहीं, क्योंकि उसमें भी पर्याय चल रही है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ पर्याय नहीं होती है और खाली अभी हमारे ही द्रव्य में हो रही है और निमित्त खाली खड़ा है, ऐसा नहीं, वो अपना कार्य खुद कर रहा है, उसके स्वयं के लिए वो उपादान है और दूसरे पदार्थ के लिए निमित्त, यदि वो अनुकूल लगे तो हम आरोप देते हैं, उस पर आरोप करते हैं कि ये निमित्त है। तो हमने अभी देखा था कि पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति वो कार्य उत्पन्न करती है, परंतु अभी उसमें और एक निमित्त को भी हम उसके साथ मिला दे तो क्या कहते हैं उसको, कि सहकारी कारण सापेक्ष यानी निमित्त सापेक्ष यानी निमित्त की अपेक्षा रखते हुए निमित्त को स्वीकार करते हुए, इतना ही उसको स्वीकार किया हमने, उसने कार्य नहीं किया, यानी निमित्त को स्वीकार करते हुए पर्याय शक्ति से युक्त जो द्रव्य शक्ति है उसी से कार्य होता है। इसको इनकी भाषा में कहना है कि सहकारी कारण सापेक्ष पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति कार्यकारी है यानी कार्य करने वाली है, यानी इसमें सारे ही कारण गर्भित हो गए। कल ये जो हमने कल पढ़ा था ना उसी को डिवीजन हुई हमारी, कि सहकारी कारण सापेक्ष विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त जो द्रव्य शक्ति है वही कार्यकारी है। इस बात का ख्याल में आया तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। मेरे में तो 11 पेज है, आपके इसमें कितने, 16। हाँ, कौन सा गेहूं का, घट पर्याय के सम्मुख। हाँ, वही वही मिट्टी की ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर, हाँ तो उसमें क्या नहीं समझे, वही मिट्टी, कौन सी मिट्टी, यानी जैसे देखो जो मिट्टी अनंतर समय में घट पर्याय रूप से परिणमित होने वाली है, अभी हम आत्मा पर घटाते हैं, अनंतर नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट, हाँ यानी जो आत्मा अगले ही समय में सम्यक दर्शन रूप परिणमित होने वाला है वही आत्मा सम्यक दर्शन का उपादान है। यानी जो मिट्टी अनंतर समय में नेक्स्ट समय में, अनंतर पूर्व कहेंगे तो पहले वाला लेते हैं और अकेला अनंतर कहेंगे तो पश्चात वाला, अनंतर अंतर अंतर छोड़े बिना नेक्स्ट, अनंतर पूर्व कहते हैं तो पहले, यानी जैसे 14 नंबर की हमने बात की तो 13वें के समय में जो मिट्टी है, 13वें पर्याय वाली जो मिट्टी है वो स्वयं 14वें का कारण है, वो मिट्टी स्वयं 13वें पर्याय को कारण नहीं कहा, 13वें पर्याय वाले द्रव्य को कारण कहा, क्योंकि क्या हमने कल एक सिद्धांत देखा था वो बहुत महत्वपूर्ण कि पर्याय में से पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती, द्रव्य में से पर्याय की उत्पत्ति होती, द्रव्य स्वयं पर्याय रूप रहता है हमेशा, किसी न किसी पर्याय रूप से द्रव्य रहता है, ऐसा नहीं कि एक पर्याय बदल ली दूसरी रहे फिर तीसरी, फिर पर्याय में से पर्याय उत्पन्न होती गई और यहाँ द्रव्य ऐसा ही रहा, ऐसी बात नहीं, द्रव्य और पर्याय एक अभिन्न अभेद है, समझाने के लिए हमने उसमें भेद डाले हैं, समझाने के लिए। अभी सोना कैसा है तो बंगड़ी रूप है, तो सोना अलग है और बंगड़ी अलग है, क्योंकि एक ही वस्तु है, वो एक ही वस्तु को हमने समझा है क्योंकि ये पलटने वाला अंश है ना, तो हमने उसको उसके पर्याय कहा, उसकी अवस्था, ये सोना अभी कौन सी अवस्था में है तो बंगड़ी की अवस्था में, तो ये उसकी पर्याय हुई। अब इसमें से हार बना, तो हार बनने के सन्मुख जो सोना है, अभी अगले ही समय में जो हार बनेगा, ऐसा जो सोना है, वो सोना है, वो उपादान कारण। ये वाक्य का अर्थ समझ में आए? चलो अभी आगे बढ़ेंगे। यदि आगमानुसार सबको मिला, किसी के इसमें 11 पेज है, किसमें 16 है ना, कितना है, 15 है। अच्छा, प्रफुल्ल भाई मिल गया आपको। यदि आगमानुसार यानी जैसे आगम में बताया उसके अनुसार विशिष्ट पर्याय शक्ति युक्त द्रव्य शक्ति को अंतरंग कारण अर्थात उपादान कारण स्वीकार कर करेने करके क्या कहते हैं, अंतरंग कारण, हमने निज शक्ति कहा ना, कार्य की निज शक्ति उस द्रव्य में ही है, तो निज शक्ति हमने देखी थी, क्षणिक उपादान भी है और त्रिकाली उपादान भी है, तो दोनों को एक साथ लेते हुए कहा कि विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति, उसको हमने अंतरंग कारण कहा या उपादान कारण कहा, तो उसको स्वीकार करके कार्य कारण की व्यवस्था की जाए तो कोई विवाद ही न रह जाए। यानी ऐसा अगर उसको हम स्वीकार करते हैं तो कोई उसमें विवाद ही नहीं है, झगड़े के कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमने उसको स्वीकार किया ना, पर्याय शक्ति को भी और द्रव्य शक्ति को भी, क्योंकि यथार्थ में यानी एक्चुअली जब जब विवक्षित कार्य के योग्य विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति होती है, तब तक उस कार्य के अनुकूल निमित्त मिलते ही है, ही लगाया। यानी जो विशिष्ट पर्याय शक्ति, समझो यहाँ इस समय पर कोई विशिष्ट पर्याय होने वाली है, ऐसी शक्ति है और द्रव्य में भी ऐसी शक्ति पड़ी है, तो इस समय तो कार्य होगा ही होगा, और समझो निमित्त न मिले तो कहते ऐसा होता ही नहीं कभी, तो निमित्त होते ही है ऐसा, और आगे कहा ऐसा नियम है, अकेला होते ही कहकर छोड़ नहीं दिया, ऐसा नियम है कहा, और ऐसा है नहीं कि निश्चय उपादान हो और निमित्त न मिले। हमारी आज तक सारी वृत्ति जो है, बुद्धि जो है, हमारी दृष्टि जो है, वो निमित्ताधीन दृष्टि है, हम तो निमित्त तो होते हैं और उसकी उपस्थिति हमारे ख्याल में भी आती है, तो इसलिए हमारी आज तक बुद्धि क्या थी, हाँ निमित्त नहीं था तब तक कार्य नहीं हुआ, देखो अभी निमित्त आया अभी कार्य हुआ। तो जब हमें पता चल गया कि विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त जो द्रव्य शक्ति है वही असली कारण है, और जब यह असली कारण होता है तब तक निमित्त होते ही है, मिलते ही है, उस कार्य के अनुकूल निमित्त वहाँ उपस्थित रहते ही है। इसी बात को असद्भूत व्यवहार में की अपेक्षा यूं कहा जाता है कि जब जैसे निमित्त मिलते हैं तब वैसा कार्य होता है। असद्भूत व्यवहार नय का अर्थ होता है दो द्रव्यों का इकट्ठा मिलकर कथन हुआ, असद्भूत यानी जो है नहीं है परंतु फिर भी उपचार किया, व्यवहार यानी उपचार किया, वहां दो द्रव्यों को जैसे निमित्त के कारण मेरा कार्य हुआ, गुरु के कारण शिष्य को ज्ञान हुआ, ऐसा जो कथन करने की जो पद्धति है वो दो भिन्न द्रव्य है ना, तो गुरु का ज्ञान गुण गुरु में, शिष्य का शिष्य में, शिष्य के ज्ञान गुण में जो बढ़ोतरी हुई वो शिष्य के अपने ज्ञान गुण के कारण हुई, वही उसका उपादान कारण है। फिर भी अभी निमित्त है वहाँ सामने उपस्थित, तो उसको कहते उसको कहना कारण, क्योंकि शास्त्र में भी ऐसी बातें आती है कि जीव ने कर्म को बांधा, जीव ने कर्म की निर्जरा की, तो ये दो भिन्न भिन्न द्रव्यों का इकट्ठा कथन करना कि इसको इसका कर्ता कहना, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना, ये हुआ असद्भूत व्यवहार ने, यानी वो सच्चा नहीं है, सच्चा ने दो द्रव्य का इकट्ठा हो ही नहीं सकता परिणाम, परंतु फिर भी निमित्त का ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में भी ऐसा कथन आता है, तो ये हमारा नए का विषय नहीं हुआ यहाँ, निश्चय ने यानी जो वस्तु में अपना कथन करना, वस्तु ही अपने पर्याय का करता है ऐसा करना, वो निश्चय हुआ, ये वास्तविकता है, और परद्रव्य ने कुछ किया नहीं, फिर भी परद्रव्य के ऊपर आरोप कहकर हम कहते इसने हमारा कार्य किया तो हमारा कार्य हुआ। भगवान के सामने हम जाकर कहते हे भगवान आपने यह मार्ग बताया इसलिए हमारा संसार का अंत आ गया, नहीं तो हम कहाँ जाते, तो हमने उपचार किया। जीव स्वयं पुरुषार्थ करता है तब भगवान के ऊपर ऐसा आरोप यानी उपचार के साथ उनको, क्योंकि उनका निमित्त बताने ना, इसलिए ऐसे कथन आते हैं, इसको कहते हैं असद्भूत व्यवहार। व्यवहार नहीं का कथन, परंतु ये असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है ऐसा हमें निश्चित करना चाहिए। वैसा ही उसको सच्चा नहीं मान लेना, उसको निमित्त को निमित्त मान लेना, बस निमित्त को स्वीकार कर सकते हैं निमित्त रूप से, परंतु उसी को कर्ता नहीं मानना, उसको कर्ता माना तो सारा घोटाला हो गया। ये मान्यता के हाँ बस उसका कथन होता है, क्योंकि निमित्त होता है क्या? होता ही नहीं, ऐसा है हमने तो स्वीकार किया। उपादान कारण भी होता है और निमित्त भी होता है, तो निमित्त कारण का तो हमने स्वीकार किया है। अब प्रत्येक ही द्रव्य अपने अपने कारण से ही परिणमता है, तो हम किसको कहेंगे अभी मुख्य? तो निमित्त के कारण हुआ ऐसा कहेंगे, कहने के लिए उसको ये असद्भुत व्यवहार नहीं कहते। देखो इसी बात को आपने क्या कहा, लौकिक व्यवहार की नहीं? नहीं नहीं नहीं, देखो व्यवहार नहीं कहते ही है जब दो द्रव्य भिन्न द्रव्यों की एक क्रिया बताई जाए, वो है नहीं ना, फिर भी वो यानी जीव ने और जीव ने कर्म बांधे, कर्म स्वयं परिणमित हुए परंतु जीव ने बांधे ऐसा कहना, यह वो लौकिक व्यवहार की बात ही नहीं लेना, ये अपने शास्त्र का व्यवहार, व्यवहार नहीं कहते उसे, व्यवहार नहीं वो जीव का वहाँ सद्भाव है, क्योंकि जीव जब जब राग करता है, राग आदि रूप परिणमता है, तब तब वहाँ कर्म की भी वैसी अवस्था होती है, कैसे वो बंध होता है कर्म का, तब उसको वैसा संबंध देख कर कहन कहने में आता है कि जीव ने कर्म को बांधा, अरिहंत भगवान ने चार घातिया यानी चार घाती कर्म का नाश करके जीव अरिहंत बना, यह असद्भुत व्यवहार है, क्योंकि दो परद्रव्य की क्रिया इस द्रव्य ने की ऐसा बताया, उसको कहते असद्भुत व्यवहार में। देखो उस नए की चर्चा में अभी नहीं जाएंगे, इतना ही यहाँ देखना कि निमित्त का ज्ञान कराने के लिए इस तरह से कथन होता है। निमित्त का ज्ञान अकेला सापेक्ष है, जब जैसे निमित्त मिलते हैं तब वैसा कार्य होता है, ऐसा जो कथन आता है वो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए होता है। परद्रव्य की प्रेजेंसी है ना वहाँ, उसको बताना है बस। नहीं, परद्रव्य ने इसको कुमार ने घड़ा बनाया, ये जो कथन है वो कथन व्यवहार नहीं का कथन है। जैसे हम कहते हैं घी का घड़ा, तो घड़ा तो मिट्टी से बना है, जिस घड़े में घी रखते हैं तो उसका संयोग देखकर हमने क्या कहा, घी का घड़ा, उसको भी व्यवहार नहीं का कथन कहते हैं। हम व्यवहार नहीं के डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, अभी यहाँ तो अपना विषय जो चल रहा है ना उसी को पकड़ेंगे। नहीं, निमित्त को भी निमित्त ने कार्य किया, यह जो कथन है वो असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। अभी असद्भुत व्यवहार नहीं के और भी डिटेल्स है, उसमें अभी हम नहीं उठेंगे, नहीं तो अपना विषय छूट जाएगा और वो तो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि नए की चर्चा उसका अलग विषय है, तो उसको इसके साथ अभी हम नहीं मिक्स करेंगे। देखो एक बात यह भी तो है कि जिस प्रकार त्रिकाली उपादान सदा उपस्थित रहता है, हमने देखा था त्रिकाली उपादान द्रव्य शक्ति को कहते हैं, और प्रत्येक द्रव्य में अपनी शक्ति जो है, द्रव्य शक्ति जो है वो अनादि अनंत विद्यमान रहती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, त्रिकाली उपादान तो सदैव रहता है। उसी प्रकार सामान्यतः निमित्त भी सदा उपस्थित रहते हैं, क्योंकि यानी विशिष्ट निमित्त सदैव उपस्थित रहता है ऐसा नहीं, जैसे त्रिकाली उपादान हमेशा है वैसे कोई न कोई निमित्त भी रहता ही है, क्यों? क्योंकि वो अपने लिए उपादान है, वो अपना अपना कार्य कर रहा है कि नहीं। जीव जब जब गमन करता है तब तब वहाँ धर्म द्रव्य तो उपस्थित है, देखो निमित्त भी सदा उपस्थित रहते, क्योंकि जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं के कार्य के लिए उपादान है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य पर के कार्य के लिए निमित्त भी तो है। धर्म द्रव्य की हमने बात की थी, धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल जो गमन करने वाले जीव पुद्गल है उसको तो चलने में तो निमित्त है ही, परंतु वो स्वयं का उपादान है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये सारे हमने घटाया था, ये सारे ही द्रव्य है। वो सारे ही द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं, यानी अपने स्वयं के कार्य के लिए वो कौन है? उपादान है। अब स्वयं का कार्य करते हुए किसी विशिष्ट द्रव्य के लिए उनका जो परिणमन है, सब स्वयं का अपना परिणमन, वो अन्य किसी द्रव्य में वो अनुकूल लगता है, तब अनुकूल है, तो इसलिए हमने उसको निमित्त कह दिया। वैसे तो स्वयं का ही कार्य कर रहे, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ कर अभी चलो इसको मदद करे, थोड़ा थोड़ा अपना परिणमन बदले, ऐसा नहीं। वो अपना अपना कार्य करता है, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करता है, जिसके लिए वो अनुकूल लगे तो उसको हम उसमें निमित्त कह देते हैं। निमित्त भी तो है, यहाँ फिर समझाया, देखो धर्म द्रव्य रूप निमित्त सदा विद्यमान है, तो क्या इसके आधार पर जीव और पुद्गलों को निरंतर चलते रहना चाहिए? यानी निमित्त तो हमेशा विद्यमान है, परंतु कब कार्य होगा? जीव स्वयं गमन करेगा तब, यानी उसकी जो पर्याय होगी गमन रूप, उस पर्याय शक्ति से युक्त जो द्रव्य शक्ति है, तभी वो उस समय वो गमन करेगा। आकाश द्रव्य गमन क्यों नहीं करता? यानी उसमें वो द्रव्य शक्ति ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है गमन करने का। धर्म ये शक्ति केवल जीव और पुद्गल में है, वो जीव नहीं ऐसा नहीं कहना, उसमें वो शक्ति नहीं है, क्रियावती शक्ति नहीं है, जीव और पुद्गल में भी है, पुद्गल में भी है, पुद्गल भी स्वयं गमन कर सकता है। हमें क्या लगता है जीव के साथ होगा तो ये पुद्गल गमन करेगा, अकेला पुद्गल कैसे गमन करेगा? वो शक्ति है ना, उसमें पुद्गल में शक्ति है, तो काल द्रव्य में भी है कि नहीं गमन करने की शक्ति? वो घड़ी घूम रही है ना, बदली होता है तो उसमें गमन शक्ति है कि नहीं? हाँ मंजुवे, नहीं है। ये घड़ी तो घूम रही है पूरे दिन, ये क्या है? घड़ी का जो घूमना वो क्या है? कौन सा द्रव्य घूम रहा है ये घड़ी? ऐसा घड़ी को देखकर अरे चलो ये तो काल घूम रहा है, ऐसा नहीं कहता, ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम। देखो क्या कहते हैं, धर्म द्रव्य रूप निमित्त सदा विद्यमान है, तो निमित्त है इसलिए इसको कार्य करना ही पड़े, ऐसी पराधीनता नहीं है। वो रेल तो है, उस पर वो गड्डी, ये ट्रेन चले ही, ऐसी कोई उसकी पराधीनता नहीं। जब ट्रेन चले तब वो उसका निमित्त होते। जैसे पानी है, मछली जब स्वयं गमन करे तो हम कह सकते हैं ये पानी उसमें निमित्त है। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी सदा विद्यमान रहता है, तो क्या जीव और पुद्गलों को निरंतर स्थित भी रहना चाहिए? यह संभव भी कैसे होगा? अभी दोनों ही निमित्त सदैव विद्यमान है, धर्म द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य, तो जीव को क्या करना है? गमन करना के स्थित रहना, उसकी क्रियावती शक्ति की जो पर्याय शक्ति है, अभी इच्छा से गमन करता है ऐसा कहेंगे तो इच्छा है क्या है? चारित्र गुण की विभाव पर्याय, और गमन कौन सी शक्ति का कार्य है? क्रियावती शक्ति। तो इच्छा है इसलिए गमन करता है ऐसा अगर कहे तो हमारी तो इच्छा बहुत है, और बैठे बैठे पैरालिसिस हुआ तो क्या होंगे? तो गमन का कार्य नहीं दिख रहेगा। तो हमें लगता है कि हम इच्छा से गमन करते हैं, हमने इच्छा की तो देखो प्रिंसिपल के ऊपर आ गए, हमारी हमेशा निमित्त के ऊपर ही दृष्टि है, इसलिए ऐसा भाषित होता है। अब यहाँ हमारी खाली दृष्टि बदलनी है, कार्य तो वैसे ही चलेंगे जैसे पहले होते थे। अभी रोटी तो हम रोज पहले हम मानते थे हम बना रहे, अब रोटी बनने का कार्य भी चल रहा है और हम उसको जान भी रहे, पर हमें अभी ये दृष्टि आ गई ना, कह रही ये स्वयं अपनी उपादान से बने, तो क्या बदला? हमको रोटी बनाना छोड़ना पड़ा, क्या हुआ? उसमें जो हम कर्तापना मानते थे वो छूट गया, दूसरे चीजों को हम बना रहे ऐसा जो कर्तृत्व का अभिमान था पहले वो छूट गया। अभी करना धरना जो होना स्वयं अपने योग्यता रूप से हो रहा है, अभी दुनिया के लिए हम वैसे हम ही रोटी बना रहे हैं, परंतु हम जानते हैं ना अभी हमारा अभिप्राय छूट गया तो क्या हुआ, बाहर से कुछ नहीं बदला। बाहर में तो ऐसे ही कार्य, पहले भी दुकान में जाता था अभी जा रहे हो, तो अभिप्राय बदला। पहले तो समझते थे देखो मेरी बुद्धि चलाई इसलिए पैसा वहां से यहाँ आया, अभी समझ में आता है कि उसमें वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की फुटबल में योग्यता है और वहां से वहां आया। वहां अपना सादा उदय भी था कर्म का, वो भी अपने कारण चल रहा था फुटबल का, और यहाँ हमारा जानने का कार्य अपने कारण हो रहा है। तो पहले ये अभिप्राय में सारा अहंकार सारी कर्तृत्व बुद्धि अपने माथे ली, अब समझ में आए कि सारा अपना अपना हो रहा है। अभी भी दुकान में जा रहा है, अभी सारा हो रहा है कार्य, फिर भी अभी जानता है किसके कारण क्या होता है, क्योंकि पंचम गुण स्थानवर्ती जीव भी युद्ध में लड़ाई भी करने को जाता है, तो क्या उसको समझता नहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। तो उसने तो अपना भिन्न अनुभव कर लिया है, अपने में उत्पन्न होने वाले राग को भी जानता है कि अभी ऐसे लड़ाई करने का राग हो रहा है, वहां शरीर की क्रिया हो रही है उसको भी जानता है। ये सारा उसके निर्णय में तो बराबर जैसा है वैसा है। ये जो अनंतानुबंधी राग था कि ये परद्रव्यों का कर्ता मैं हूं ऐसा जो मानता था वो सारा छूट गया। तो बाह्य में देखने वाले को उसको ऐसा लगता रही है, तो ये कैसे समय दृष्टि उसमें कोई बाहर का ऐसे चेंज नहीं हो जाता, ये घर गृहस्थी वाला ही होता है। उसकी मान्यता में जो परिवर्तन हो गया जमीन आसमान का, वो बाहर से क्या दिखे? आपका प्रश्न था ना कैसे पहचानना, ये नहीं पहचान सकते। वो मिथ्या दृष्टि है कि नहीं वो तो उसकी वाणी से पता चले, क्योंकि सम्यक दर्शन जिसको प्रकट हो गया है उसकी वाणी में और औरों की जो लौकिक भाषा है उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो ऐसे बाहर से कुछ पता नहीं चलता और उसकी मान्यता पूरी छूट गई होती, कर्तृत्व तो बुद्धि छूट जाती है ना? उसको पहचान सकता है उसको, अगर उसको परख हो तो। सच्चा मुमुक्षु कहते किसको, जो स्वयं समय दृष्टि है उसको तो पता चले या न भी चले कदाचित, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि उसका जो अपना जो अनुभव है वो बताए तो दूसरों को पता चले, सामने वाले को कैसा पता चले, ऐसी बात। आत्मानुभव होता है उसी समय समय दर्शन होता है। आत्मानुभव ये ज्ञान गुण की पर्याय है, आत्मा की अनुभूति, और सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की परिणति है। उसी समय चारित्र यानी अंतरंग में रमणता चल रही है उसकी, वो चारित्र गुण की परिणति है। स्थिरता जो है ना आत्मस्थिरता, अपने का ही अनुभव ही चल रहा है उसका, अपने आप में ही वो स्थिर हो गया है, अपने को ही जान रहा है, वो हो गया चारित्र गुण। तो ये सारे गुणों का परिणाम एक साथ होता है, अनंत गुणों का, सारे ही आत्मसन्मुख होकर अपने आत्मा का उसमें एक रूप ऐसा अनुभव आ जाता है। तो ये उसको कहते हैं वो अनंत गुणांश सम्यक, ऐसा कुछ है ना, सर्व गुणांश सम्यक जी में आता है ना, सर्व गुणांश सम्यक। उसको क्या ऐसा ये ज्ञान गुण का चल रहा है, ये श्रद्धा गुण का चल रहा है, ऐसा नहीं बोलता वो, सारा मैं ऐसा अभेद अखंड ऐसा उसका अनुभव हो जाता है। देखो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो हमेशा विद्यमान है। समझो घर में झगड़ा हुआ मियाँ बीबी का और बच्चे बैठे हैं, तो माँ ने इधर से खींचा और पिताजी ने उधर से खींचा, तो बच्चे को किधर जाना चाहिए? वैसे हमारी हालत होगी यदि धर्म द्रव्य हमें चलाता और अधर्म द्रव्य हमें रुकाता, तो हमारी हालत वैसे हो जाती बच्चे जैसे। ऐसा कोई किसी को चलाता नहीं और कोई किसी को रुकाता नहीं, जीव स्वयं चले तो धर्म द्रव्य हाजिर है, जीव स्वयं गमन करते करते रुक जाए तो अधर्म द्रव्य हाजिर है। जब जो स्वयं की योग्यता से कार्य होगा तो वैसा वैसा निमित्त हाजिर है, बस मुझे रुकना है, मगर अधर्म द्रव्य नहीं हुआ तो समझो वो दूसरे जीव को हेल्प करने को गया और मुझे कुछ हेल्प नहीं की, तो ऐसा नहीं होता। कोई निमित्त सदा विद्यमान होता है, यह संभव भी कैसे होगा? क्योंकि गमन और स्थिति के निमित्तों के सदा विद्यमान रहने पर जीव और पुद्गल चलेंगे या ठहरेंगे? परस्पर विद्युत स्वभाव वाले होने से चलना और ठहरना दोनों क्रियाएं एक साथ तो संभव नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है कि निमित्त के कारण कार्य नहीं होता, निमित्त की उपस्थिति होती। अतः सहज रूप से तो यही सिद्ध होता है कि सभी जीव और पुद्गल अपनी क्षणिक उपादानगत योग्यता के अनुसार चलते व ठहरते हैं। इच्छा के अनुसार नहीं था, अपनी उस समय की वो पर्याय की योग्यता है ना, उसके है। और जब तक वे अपनी योग्यता अनुसार चलते हुए ठहरते हैं, तब तक धर्म और अधर्म द्रव्य निमित्त मात्र हो जाते हैं। इस प्रकार कार्य के उत्पन्न होने के काल का नियामक कारण तो, यानी कार्य किस समय उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं काल का नियामक कारण, यानी वो काल को कौन निश्चित करता है, कार्य कब उत्पन्न होगा ये की कौन डिसाइड करता है? तो कहते हैं उपादानगत योग्यता रूप क्षणिक उपादान ही रहा। ये हमने कल बहुत विस्तार से देखा था कि कार्य कब होगा डेफिनेटली, उसको कौन निश्चित करेगा, क्षणिक वाला बराबर। न तो त्रिकाली उपादान ही और न निमित्त ही। त्रिकाली उपादान तो उस द्रव्य की योग्य, द्रव्य की शक्ति है बस, परंतु वो द्रव्य शक्ति से पड़ी है अनादि से, तो क्यों नहीं कार्य हो रहा है? तो कहते कि जो पर्याय शक्ति है क्षणिक उपादान, उससे ही कार्य कब होगा वो निश्चित हो जाएगा। प्रश्न, क्या नियामक कारण भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं? अच्छा, अभी ये जो पहला है वो कल सुना, एक प्रश्न और उसका उत्तर है, किसी किताब में नहीं है, किसी में है, मेरे में है, मैं पढ़ती हूँ, आप जरा सुनना जरा, उसमें है क्या? हाँ देखो, क्या नियामक कारण भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं? क्यों नहीं, अवश्य हो सकते। प्रत्येक कार्य यानी पर्याय का त्रिकाली उपादान इस बात का नियामक है कि यह कार्य अमुक द्रव्य या उसके अमुक गुण में ही होगा। यानी त्रिकाली उपादान क्या निश्चित करता है, द्रव्य को निश्चित करता है कि इसी द्रव्य में वो कार्य होगा। सम्य दर्शन का कार्य होगा तो हमें कौन से द्रव्य की, छह द्रव्य में से कौन से द्रव्य की तरफ देखना पड़ेगा, जीव द्रव्य में ही ये कार्य होगा, तो ये द्रव्य का नियामक होगा, अन्य द्रव्य में नहीं और उसी अन्य के अन्य द्रव्य के अन्य गुण में भी नहीं। अब ये जीव द्रव्य तो निश्चित किया, परंतु जीव में तो अनंत गुण है, तो कौन से गुण में होगा, श्रद्धा गुण, इतना तो निश्चित हुआ, इतना ही वो त्रिकाली उपादान का कार्य है, उसका नियामक है। सम्य दर्शन रूप कार्य आत्म द्रव्य और उसके श्रद्धा गुण में ही संपन्न होगा, पुद्गलादि द्रव्यों या आत्मा के ज्ञानादि गुणों में नहीं, अन्य गुणों में नहीं होगा, ये उसमें नहीं होगा आपके उसमें। प्रश्न उत्तर, हाँ आप सुनना बराबर इसको खाली, और चार पांच लाइन है ये कुछ तत्समय की, सॉरी उसके ऊपर का ना, अनंतर पूर्व क्षण पर्याय से युक्त द्रव्य का व्ययरूप क्षणिक उपादान विधि का नियामक है। देखो हमने कल देखा था 13वीं नंबर वाली पर्याय, हमने पूर्व पर्याय देखी, तो 13वीं नंबर वाला जो द्रव्य यानी 13वीं पर्याय सहित वाला जो द्रव्य, 13वीं पर्याय युक्त द्रव्य का व्यय हुआ, द्रव्य का व्यय किस अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य का ही व्यय कहा, यानी वो पूर्ववर्ती पर्याय युक्त द्रव्य उसका जो व्यय हुआ वो किसका नियामक है, विधि यानी पुरुषार्थ यानी प्रोसेस, क्या 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 करते करते यहाँ तक आए, तो पहले पहले का पहले पहले की पर्याय व्यय होती गई, अगली अगली पर्याय उत्पन्न हुई ना, तो पहले वाला द्रव्य बदला, अभी अगला पर्याय सही द्रव्य आया, फिर वो बदला, फिर उसके अगला पर्याय वाली द्रव्य आया, फिर वो बदला, फिर उसके अगले पर्याय सहित का द्रव्य आया, इसको हम विधि कहते हैं। वही समझा ना, पहले क्या हुआ तो जीव को ऐसे ही जानने की रुचि हो गई कि अरे मैं आत्मा हूँ तो कैसा हूँ, तो उसको पता चला कि कहीं मुझे ये उपदेश मिलेगा, तो वहां जाके उसने उपदेश सुना, फिर उपदेश सच्चा है निर्णय किया, फिर उसके उपदेश पर विचार किया, तत्व निर्णय किया, फिर तत्व निर्णय के बाद आत्म सम्मुख उपयोग हो लेगा, और आत्मा के सम्मुख उपयोग में उसको ये सारा जो प्रोसेस है वो करण लब्धि प्राप्त होकर उसको सम्य दर्शन हो गया। तो इसको कहते हैं विधि सारी, यानी एक पर्याय नहीं है, अनेक अनेक पर्यायों का सिलसिला है, अनेक एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, ऐसे अनेक पर्याय होते 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 ये सम्य दर्शन की विशिष्ट पर्याय उत्पन्न हुई, तो उसको कहते हैं पुरुषार्थ या विधि। तो ये जो अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उसका व्यय हुआ उसको कहते हैं विधि का नियामक, यानी किसके पूर्वक ये पर्याय हुई उसको ये बता रहा है। इस उपादान कारण से यह सुनिश्चित होता है कि यह कार्य इस विधि से, यानी इस प्रक्रिया से, इसको प्रोसेस कहते हैं ना, रोटी बनानी, क्या पहले आटा लिया, उसमें पानी डाला, फिर उसका वो लोई बनाए, फिर वो इसका ऐसे ऐसे किया, तो ये सारा हुआ तो रोटी बनी, तो ये सारी विधि कहलाती, प्रक्रिया कहलाती। तो इसी प्रक्रिया से ही संपन्न होगा, अन्य प्रकार से नहीं। तो कोई कहते हैं कि सम्यक दर्शन होगा, कब होगा, अकेले काल को देखते, हाँ हाँ इस विशिष्ट समय में होगा, भगवान ने जाना है, चलो तो होगा, चलो अभी हम दुकान में जाएंगे, आराम करेंगे, पैसा कमाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो कहते हैं इस तरह से नहीं होता, उसकी पूर्व पर्याय भी निश्चित होती है, जिसको सम्यक दर्शन होगा इसी विधि से होगा, अन्य विधि से, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं होगा। क्या लगता है? तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो होगा कि नहीं होगा? शास्त्र तो हम समझने के लिए, आत्मा कैसा है ये समझने के लिए शास्त्र पढ़ते, तो शास्त्र पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। जो हमने पढ़ा है, जो आत्मा संबंधी जाना है, उस पर हम खुद विचार करें, खुद निर्णय करें, ये ऐसी ही चीज है, और उसको कैसा जानना, ये सारा जो शास्त्र में आता है, उस विधि से अगर हम जाए तो इसी प्रक्रिया से सम्यक दर्शन होगा, अन्य किसी भी प्रक्रिया से नहीं होगा। हम खाली भगवान के भरोसे पड़े रहे या हमने किसी को गुरु मान लिया, चलो हमारा कार्य होगा, ऐसे तीन काल में नहीं होगा। तो कब होगा? तो हम कहते जब वो पर्याय विशिष्ट है, तो हमने पर्याय शक्ति को कहा, परंतु कैसे होगा तो उसका सारा विधि भी निश्चित है, तो उस विधि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होगा, उसी को कहते हैं पुरुषार्थ। ये तो पुरुषार्थ प्रत्येक द्रव्य में होता है, विधि कहा ना, नहीं तो छह द्रव्य में कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसमें पूर्व पर्याय का व्यय होकर ही हुआ है, उसी को यहाँ पुरुषार्थ कहा, उसी को विधि कहा। तो छह द्रव्य में ये पुरुषार्थ हुआ कि नहीं हुआ? विशिष्ट पर्याय का व्यय वो द्रव्य है, अपनी विशिष्ट पर्याय वहां व्यय हुई और द्रव्य अपने नए पर्याय के साथ उत्पन्न हुआ, यही विधि है और यही पुरुषार्थ है। तो ये तो हर द्रव्य में है। हमें क्या लगता है, हमारे में ज्ञान गुण है, हम समझदार है ना, तो हम पुरुषार्थ करेंगे, तो समझ कर हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ तो क्योंकि पुद्गल में कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, बाकी आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य की हमें कुछ बात, क्योंकि वो हमें सामने दिखते नहीं, परंतु ये पुद्गल में कुछ कार्य अभी ये पड़ा पड़ा, इसका कलर फेड अप हो गया, वर्ण जो गुण है उसकी पर्याय बदल गई, तो उसमें अपने में कार्य हुआ कि नहीं हुआ है? तो हुआ है कार्य, तो उस विधि पूर्वक हुआ कि ऐसे हो गया? ये विधि जिसको कहा, जिसको पुरुषार्थ कहा, उस पुरुषार्थ से ही यहाँ कार्य हुआ। तो ये विधि का नियामक कौन है? अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, इतना लंबा लंबा, अभी आदत हो गई ना सुनने की, पहले दिन तो हमने इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं लिया था, अभी मालूम है किसको कहना। तो ये क्या हुआ? विधि का नियामक। पहले त्रिकाली उपादान को क्या कहा था हमने? द्रव्य गुण को, ये किस द्रव्य में या किस गुण में कार्य होगा इसका नियामक है वो त्रिकाली उपादान, किस विधि से कार्य होगा इसका नियामक है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त जो द्रव्य, उसका व्यय, ये विधि का नियामक। अब तक समय की योग्यता रूप, हमने वो कार्य अभी क्यों हुआ और यही कार्य क्यों हुआ, तो कहते तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान काल का नियामक है, कब होगा और कौन सी पर्याय होगी इसका नियामक है वो तत्समय की योग्यता वाला त्रिकाली क्षणिक उपादान। जिस द्रव्य या गुण में जिस समय जिस कार्य रूप दोनों लिया, अकेला समय नहीं लिया, कब होगा और कौन सी पर्याय होगी ये दोनों ही निश्चित करने वाली जो तत्समय की योग्यता है, यानी जिस समय जिस कार्य रूप परिणमित होने की पर्यायगत योग्यता होती है, द्रव्य में पर्याय शक्ति है ना, हमने देखा था ना, तो जिस समय जो कार्य होना है ऐसी शक्ति उस द्रव्य में ही पड़ी है, तो ऐसी जो शक्ति है वह द्रव्य या वह गुण उसी समय उसी कार्य रूप परिणमित होता है। ये जो श्रद्धा गुण है वो विशिष्ट समय में विशिष्ट कार्य रूप सम्यक दर्शन रूप कार्य हुआ, उसका उसी समय क्यों हुआ, तो उसमें ऐसी पर्यायगत योग्यता थी द्रव्य में। हमने ये भी देखा था कि द्रव्य के अनादि अनंत जितने पर्याय हैं, कितनी है द्रव्य में, एक एक द्रव्य में पर्याय कितनी होती है, कितने अनंत, हाँ जितने तीन काल के समय है, देखो काल द्रव्य में अनादि से अनंत वो काल के समय है ना, भूत वर्तमान और भविष्य, उसमें ही प्रत्येक द्रव्य में पर्याय होती है, क्योंकि एक एक समय में एक एक पर्याय होती है, तो जितने तीन काल के समय है उतनी पर्याय विद्यमान है द्रव्य में, कहाँ विद्यमान है हमें तो नहीं दिखती है, वो तो योग्यता रूप तो है, अपने अपने समय पर अपने अपने निश्चित है, कोई हो चुकी कोई होने वाली है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब एक साथ विद्यमान है कि नहीं है, अभी द्रव्य में तो विद्यमान नहीं है, द्रव्य में तो एक समय में एक ही पर्याय होती है, परंतु केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सारी पर्याय एक साथ दिख रही है ना, तो विशिष्ट समय में विशिष्ट पर्याय हो ऐसी शक्ति अपने द्रव्य में है, तो अभी कहां देखना पड़ा, अपनी ओर, और जो अपनी ओर देखता है उसको समय व्यक्ति के पर्याय हो जाता है, कुछ नहीं करना है बस आनंद में रहना है, हैं? ये झंझट बाकी छूट जाती है बाकी सारी। देखो क्योंकि कार्य का दूसरा नाम पर्याय अर्थात काल भी है, काल को ये सॉरी पर्याय को काल भी कहते हैं, हमने कहा ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो ये काल क्या है वो पर्याय, पूरे द्रव्य के क्षेत्र काल भाव में काल यानी पूरा अनादि अनंत पर्याय के समूह को भी काल कहते और एक एक समय के पर्याय को भी काल कहते। देखो कार्य का दूसरा नाम पर्याय है और उसी को काल भी कहते हैं, यही कारण है कि काल के नियामक, काल का नियामक यानी पर्याय का नियामक, ये द्रव्य में है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य में है कि उसका काल द्रव्य के बाहर है, चतुष्टय जो है हम स्वचतुष्टय सीखे ना, द्रव्य में द्रव्य होता है क्षेत्र होता है काल है और भाव है, ये काल यानी पर्याय, तो ये द्रव्य की पर्याय द्रव्य में है, तो कौन सी होगी पर्याय उसको कहते हैं काल का नियामक। अब उसमें ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हैं हम कब होगी, तब हम वो परद्रव्य का आधार लेके काल द्रव्य के आधार से समझाते हैं कब होगी, तो निश्चित समय बताते हैं, हाँ ये 2000 साल में या अमुक एक महीने में ऐसे ये पर्याय होगी, परंतु वो द्रव्य की अपनी पर्याय है, वो उसका अपना स्वकाल है, ना तो इसको कहते हैं काल का नियामक। काल में अकेला वो समय वाला घड़ी का समय नहीं लेना कि इतने बजे होगी, ऐसा नहीं लेना, वो द्रव्य की विशिष्ट पर्याय विशिष्ट उसके क्रम से ही होगी, उसको कहते हैं काल का नियामक। काल के नियामक तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान को कार्य का नियामक भी कहा जाता है, जो काल का नियामक है उसी को कार्य का नियामक कहते हैं, कब होगी और कौन सी पर्याय होगी ये जो क्षणिक उपादान से या तत्समय की योग्यता वाला जो क्षणिक उपादान है उसी से यह निश्चित हो जाता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि स्वभाव का नियामक त्रिकाली उपादान, विधि या उसी को पुरुषार्थ और प्रक्रिया का कौन सा प्रोसेस है उसका नियामक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य रूप क्षणिक उपादान और काल का या कार्य का नियामक तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान रहा। हमने तीन देखे थे कारण, निमित्त है, निकाली उपादान है और क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान में भी दो लिए, अनंतर पूर्व और तत्समय की योग्यता। तो त्रिकाली उपादान ये क्या हुआ? स्वभाव हुआ कि उस द्रव्य का ऐसा स्वभाव है, ये स्वभाव का नियामक हुआ। फिर विधि या पुरुषार्थ का नियामक कौन है? तो जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है वो विधि का नियामक। अब काल का या कार्य का नियामक कौन है? तत्समय की योग्यता। इतना ख्याल आया? यहाँ एक प्रश्न यह भी, हाँ अब यहाँ से शुरू है, आपके पुस्तक में है यहाँ से आगे। ये जो बीच वाला इतना जो प्रश्न और उत्तर है वो एक तो है मेरे इस पुस्तक में। अच्छा नए में है, पुराने में नहीं। यहाँ एक प्रश्न यह भी संभव है कि धर्म और अधर्म तो उदासीन निमित्त है। हमने पहले निमित्त के दो भेद देखे थे, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक। उसकी अभी चर्चा नहीं की, तर्क की हमने किसको करना क्या, वो अभी आएगा सारा। देखो यह प्रश्न है कि धर्म और अधर्म तो उदासीन निमित्त है, इस कारण वे नियामक कारण कदाचित न भी हो, पर प्रेरक निमित्त के बारे में तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, प्रेरक निमित्त किसको कहते हैं? तो जो इच्छावान और क्रियावान द्रव्य है उसको प्रेरक निमित्त कहते हैं। वो गमन वाले है क्या, ऐसे अनादि अनंत एक जगह स्थिर वाले है, एक जगह स्थिर, तो वो क्रियाहीन द्रव्य, क्रिया वाले नहीं है। तो इच्छा वाले भी नहीं है और क्रिया वाले भी नहीं है, तो उनको कहते हैं उदासीन निमित्त। और प्रेरक निमित्त है ने इच्छा वाले। अभी हम तुम इच्छा वाले हैं, हम कहते ना हम इच्छा से गमन करते हैं। अभी आप ऐसे सोचते हैं ना, हमारी इच्छा हुई तो हमने गमन किया, हमारी इच्छा हुई तो हमने पेंसिल ऊपर से नीचे। तो जो जो इच्छा वाले द्रव्य है और जो क्रिया वाले हैं, कि अभी ये दीवार गिर गई और हम भी लुढ़क गए तो क्या हुआ? हाँ पुलगर वो क्रिया वाला था, इसलिए वहां जीव का भी ऐसा परिणाम हुआ। नींद में हम कोने ऐसे पलंग पर सोए थे और नींद में वो शरीर ढल गया नीचे, तो हम भी नीचे आ गए। वो क्रिया वाले द्रव्य के साथ हमारी भी वैसा परिणाम हुआ, वो निमित्त में लेना उसको। तो ये जो इच्छा वाले और क्रिया वाले जो जो द्रव्य है उनको जब निमित्त में हम रखेंगे तो उसको कहेंगे प्रेरक निमित्त। तो ये प्रेरक और उदासीन ऐसे दो द्रव्य ये निमित्त होते। अब इसके लिए यहाँ प्रश्न क्या लिया, अब प्रश्न फिर पूछते कि धर्म और अधर्म तो उदासीन निमित्त है, यानी वो तो कुछ करते नहीं है। तो किसी के ऐसा मन में संभावना ऐसे होते, जो इच्छा वाला है जो क्रिया वाला है वो तो कुछ करेगा कि नहीं, वो निमित्त तो कुछ कार्य में थोड़ा मदद करेगा कि नहीं करेगा। तो इस कारण में नियामक कारण कदाचित न भी हो, पर प्रेरक निमित्त के बारे में तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए। जब जब हवा आती है तो वो ध्वजा लहराती है, तो देखो हवा के कारण लहराई ना, अभी तो स्थिर थी इसलिए वो प्रेरक निमित्त था, इसलिए अभी कार्य हुआ। तो ऐसा प्रश्न किसी को उठता है कि प्रेरक निमित्त के कारण तो कार्य होता है कि नहीं होता, तो उसके लिए उत्तर देते हैं। इस आधार पर कोई कह सकता है कि उदासीन निमित्त भले ही कुछ न करते हो, पर प्रेरक निमित्त तो सब कुछ करते ही है। ऐसे हमारे मन में शंका होती है क्योंकि ऐसा ही देखने में आता है। जब जब हमें इच्छा होती है तो हम विशिष्ट कार्य करके दिखाते, देखो अभी मैंने जोर से बोला, देखो अभी हल्के धीरे से बोला, तो ऐसे क्या लगता है? देखो निमित्त ही कर रहा है। छात्रों के अध्ययन में अध्यापक, पुस्तक और दीपक ये तीनों ही निमित्त हैं। अध्यापक तो पढ़ा रहा है और उसको पढ़ना है तो दीपक भी चाहिए ना, पुस्तक में पढ़ता है वो देख देख कर, तो अंधेरे में नहीं देख रहा है और पुस्तक भी उसको चाहिए, तो ये सारे निमित्त रूप से है वहाँ पर। अध्यापक प्रेरक निमित्त है, इच्छा वाला है ना वो अध्यापक स्वयं, वो बराबर है यहाँ ध्यान दो करके वो ढोक बजाकर सिखाता है तो उसको कहाँ प्रेरक हो, इच्छा वाला है। और पुस्तक व दीपक उदासीन निमित्त है। अभी उसमें क्रियावती शक्ति वगैरह ऐसा नहीं लेना, यहाँ गमन रूप कोई क्रिया रूप कार्य नहीं है, बस वो स्थिर है। अभी सामने है पुस्तक और वहाँ प्रकाश भी विद्यमान है, इतना ही लेना। इसलिए उसको उदासीन निमित्त में लिया। दीपक और पुस्तक को भले ही कर्ता मत कहो, पर अध्यापक को तो कर्ता कहना ही होगा। वह तो सक्रिय होकर प्रेरणा देता है, समझाता है, फिर भी यदि छात्र अध्ययन में प्रवृत्त नहीं होते हैं, तो वह उन्हें दंड भी देता है। इसलिए उसको तो प्रेरक निमित्त, तो उसको तो स्वीकार करो, ऐसा कहते हैं। ये सारा प्रश्न ही चल रहा है अभी तक, अभी उसका उत्तर नहीं आया है। अतः पुस्तक और दीपक की अपेक्षा अध्यापक का स्थान अवश्य ही महत्वपूर्ण है। सामने पुस्तक हम पढ़ते तो कुछ सुना पता नहीं चलता है, तो हमें किसी ने समझा दिया तो हम बराबर समझ गए, तो वो अध्यापक का कुछ तो अधिक जरा उसमें वैल्यू उसकी है, उसको जरा ज्यादा मार्क तो दे दो। ये पुस्तक भी निमित्त है और अध्यापक भी निमित्त है, तो अध्यापक के खाते में थोड़े ज्यादा मार्क डालने चाहिए कि नहीं, ऐसा कहते हैं। ऐसा प्रश्न है भी, क्यों नहीं। यह बात तो एकदम स्पष्ट ही है कि दीपक और पुस्तक की अपेक्षा अध्यापक की निमित्तता भिन्न प्रकार की है। निमित्त है परंतु वो उससे थोड़ा हटकर अलग प्रकार का है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए निमित्तों के उदासीन और प्रेरक ये दो भेद किए गए हैं, यानी उसकी निमित्तता अलग प्रकार की है, इसको बताया है। और यह बताया गया है कि छात्रों के अध्ययन में पुस्तक और दीपक उदासीन निमित्त है और अध्यापक प्रेरक निमित्त। तो यहाँ निमित्तों के भेद करने से किसी को ऐसा लगा कि प्रेरक कहने से हाँ ये तो कुछ कार्य में हेल्प ज्यादा करते हैं ना, कि तो उसकी बात आगे आएगी, अभी वो भी समझाएंगे। अरे भाई, उक्त विश्लेषण से तो उदासीन और प्रेरक निमित्तों में परस्पर क्या अंतर है, मात्र यही स्पष्ट होता है। यानी वो निमित्त अलग अलग प्रकार के, इतना ही सिद्ध हुआ। निमित्त ने कार्य में कुछ किया, ये कहाँ से सिद्ध हुआ। निमित्त तो निमित्त ही है, वो उपस्थिति मात्र ही है, उसने इस द्रव्य के पर्याय में कुछ नहीं किया, उसका योगदान इतना ही है, वो उसका अपना कार्य करता है बस। वो अभी रोटी बनी तो उसमें चकला भी है, बेलन भी है, वो सारा है ना, तवा है, गैस है, सारा है। परंतु वो उसमें हमने बाई को निमित्त, वो अलग टाइप का निमित्त है, तो हमने उसको प्रेरक कहा और बाकी को उदासीन का, ये निमित्तों में डिफरेंस किया। परंतु ये उसको प्रेरक निमित्त कहा, परंतु उसने कार्य में कुछ किया, ऐसा कहने का बिल्कुल वहाँ उद्देश्य नहीं है। कार्योत्पत्ति में निमित्त का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, यानी अकेले निमित्तों निमित्तों में हमने डिफरेंसेस कर दिया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसने कार्य में उत्पत्ति में कुछ थोड़ा हाथ बाहर लगाया। प्रेरक और उदासीन ऐसे निमित्तों में डिफरेंशिएट करने से भी, निमित्तों में हमने भेद डाल के समझाए, फिर भी कार्य में वो निमित्त कुछ नहीं करेगा, भले वो प्रेरक हो या उदासीन हो। तो ये ईश्वरोपदेश में भी बताया है, उसका हिंदी पढ़ते है, ये जो संस्कृत है ना, उसका हिंदी है। अज्ञ को यानी अज्ञानी को उपदेशादि निमित्तों द्वारा विज्ञ नहीं किया जा सकता। उपदेश देकर अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। यानी जो किसी के बारे में अभी अनजान है, तो उसको उपदेश देने से उसको उसके बारे में वो ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और न विज्ञ को अज्ञ ही कर सकते हैं, और जो समझने वाला है उसमें ज्ञानी है, उसको अज्ञानी भी नहीं कर सकते, क्योंकि पर पदार्थ तो निमित्त मात्र है। यदि उपदेश द्वारा सारे समझने लगे तो सभी एक जैसे समझना चाहिए। क्लास में तो टीचर पढ़ाते हैं और 50 विद्यार्थियों को एक जैसे पढ़ाते, तो फिर कोई फर्स्ट नंबर आता है, कोई लास्ट नंबर आता है, ऐसा क्यों। उपदेश के द्वारा ही यदि उनको सियाना किया जाता है तो सब एक जैसे होना चाहिए। निमित्त से ही अगर कार्य होता है तो एक जैसा होना चाहिए, तो अलग अलग दिख रहा है ना सब। जैसे कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को धर्मा सिखाए होता है, इसी को स्पष्ट करते हुए इसकी संस्कृत टीका में लिखा है, यहाँ भी हम हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। यहाँ यह शंका हो सकती है कि यूं तो बाह्य निमित्तों का निराकरण ही हो जाएगा। किसी को शंका होती है यदि आप निमित्त को ऐसा कहते हैं, निमित्त से कुछ होता ही नहीं है, तो कोई निमित्तों को मानेगा ही नहीं, उनका निराकरण ही हो जाएगा, यानी उनके रूल आउट ही कर देंगे हम। इसका उत्तर यह है, अन्य जो गुरु आदि तथा शत्रु आदि है, वे प्रकृत कार्य के उत्पादन में, प्रकृत कार्य ने जो अभी हो रहा है कार्य, उस कार्य के उत्पादन में तथा विध्वंसन में सिर्फ निमित्त मात्र है, वो बस निमित्त है। वस्तुतः किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है, यानी जो जो द्रव्य की योग्यता है वही उसका असली कारण है। बाह्य में तो सारे निमित्त मात्र है। भगवान को देखकर हमको शुभ भाव आ गए तो हमारी जो पात्रता है उस समय शुभ भाव रूप परिणमित होने की, वही असली कारण है। और सामने भगवान है तो उनके ऊपर निमित्त का आरोप आता है। किसी व्यक्ति को देखकर हमको क्रोध आता है तो व्यक्ति निमित्त मात्र है, और तो सच्चा कारण कौन है? या हम स्वयं है, हमारे में जो चारित्र गुण है उसकी जो क्रोध रूप विभाव परिणति चल रही है, इस समय ऐसे क्रोध रूप परिणमित होने की उसकी योग्यता हमारे में पड़ी है, वही असली कारण है। और हम क्या मानते हैं, ये सामने जब जब मैं इसको देखता हूँ तब तक मुझे बहुत क्रोध आता है, तो हमने निमित्त से ही कार्य हुआ माना, अपना दोष स्वीकार नहीं किया, सारा दोष किसके माथे मर दिया? सामने वाले के। देखो इसको देखते ही मुझे बहुत क्रोध आता है, हम मानते कि नहीं मानते? वैसे तो मैं बहुत शांत तबीयत का हूँ, जब जब इस व्यक्ति को देखता हूँ तब तक बहुत क्रोध आता है। तो हमारी मान्यता है ये पर के कारण हमको क्रोध आ रहा है। तो यहाँ लिखा, इसलिए यहाँ गुरु और शत्रु दोनों को लिया कि गुरु और शत्रु जो है वो मात्र निमित्त है, साक्षात साधक नहीं है। साधक यानी साक्षात कार्य करने वाला, कार्य की उत्पत्ति करने वाला, ये जो पर्यायगत योग्यता है, जो पर्याय शक्ति जिसको हमने कहा, क्षणिक उपादान जिसको कहा, वही साक्षात साधक है, वही साक्षात कार्य करने वाला है। क्या नाता है जयबेन? उक्त कथन से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि कार्य के प्रति साधकतम, साधकतम यानी उत्कृष्ट साधक, उत्कृष्ट उसका साधन, साधकतम लिखा है ना, तर और तम हम कहते ना, वो गुड है, बेस्ट है, बेटर है और बेस्ट है, वैसे तरतम यानी सबसे उत्कृष्ट साधक यानी उसका करने वाला कौन है? तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण ही है। यानी कार्य जब जब होता है तब तब उसका उत्कृष्ट करने वाला, उसको साधक कहा, या साधक कहो साधन कहो, तो क्या कारण है उसका? सबसे सबसे बलवान कारण क्या है? तत्समय की योग्यता, उसी से कार्य होगा, वही कार्य होगा और उसी समय होगा। प्रेरक व उदासीन निमित्तों को, निमित्तों में मूलभूत अंतर इस प्रकार है। अब ये प्रेरक और उदासीन समझा रहे हैं, पहले तो इसकी बात की थी, अब यहाँ उन नक्की किसके के किसे कहते हैं उसकी बात अब आई। इच्छा शक्ति से रहित एवं निष्क्रिय द्रव्य उदासीन निमित्त होते हैं, यानी जिसमें इच्छा शक्ति नहीं है वे, और जो क्या है, निष्क्रिय ने क्रियाहीन, निष्क्रिय ने परिणमन बिना के ऐसा नहीं लेना, क्रिया ने हलन चलन रूप क्रिया जिसको कहते, क्षेत्र से क्षेत्रांतर करने रूप जो क्रिया है उसको क्रिया कहा। तो ये जो जीव में भी जो प्रदेशों के हलन चलन रूप ये क्रिया ली, तो ये जो क्रिया जिसमें है उसको क्या कहेंगे? प्रेरक निमित्त। और इच्छा वाले हैं वे भी प्रेरक निमित्त, और इच्छा शक्ति से जो रहित है और जो निष्क्रिय द्रव्य है वे उदासीन निमित्त है, और इच्छावान एवं क्रियावान द्रव्य प्रेरक निमित्त कहे जाते हैं। तो भगवान को देखकर हमें शुभ भाव आया, तो भगवान कौन से निमित्त है बोलो, क्यों? इच्छा वाले है ना? नहीं, इच्छा रहित है, वितरागी है ना, इच्छा है क्या उनमें? अभी तो इच्छा रहित है, वो निष्क्रिय है, यानी वो इच्छा रहित लेना उन्हें, उदासीन निमित्त। धर्म द्रव्य स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों की गति में निमित्त होता है, एवं अधर्म द्रव्य गमन पूर्वक ठहरते हुए जीव और पुद्गलों की स्थिति में निमित्त होता है, इन्हें रुकने में निमित्त होता है। दोनों ने, इच्छा और क्रिया दोनों ने, या इच्छा या क्रिया, क्योंकि पुद्गल को भी हम प्रेरक निमित्त कहते हैं। हवा को प्रेरक कहा तो हवा, हवा में तो हमने वो पुद्गल का रूप लिया ना, वहाँ हवा से ध्वजा फहराए, तो अकेले पुद्गल को जब लेते हैं तो उसमें क्रिया वाला द्रव्य, इसलिए उसको प्रेरक कहते हैं। देखो आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त है, और काल द्रव्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होते हैं। तो इसमें क्या क्या, देखो देखो, धर्म और अधर्म गमन करने में और ठहरने में, आकाश उसको अवगाहन देने में, और काल परिणमन करने में। तो धर्म अधर्म आकाश एवं काल, ये चारों द्रव्य इच्छा शक्ति से रहित है और निष्क्रिय भी है, ना उनमें इच्छा है ना क्रिया है, इसलिए ये उदासीन निमित्त कहे जाते हैं। छात्रों को पढ़ाने वाले अध्यापक इच्छावान होने से प्रेरक निमित्त कहे जाते हैं, और ध्वजा फड़कने में हवा सक्रिय होने से प्रेरक निमित्त कही जाती है। तो इसलिए हमें जब हम इच्छा पूर्वक कोई कार्य कहते करते हैं तो हमें क्या लगता है, देखो हमने कार्य किया, परंतु ये हम भी वहाँ प्रेरक निमित्त है, और निमित्त कार्य में कुछ नहीं कर सकता। ये तो अभी मूल पक्का एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का क्यों नहीं करता है, क्योंकि उपादान अपने अपने पर्याय का करता है, निमित्त तो पर द्रव्य है, वो अपने खुद की पर्याय का भला करता हो, परंतु वो दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। यद्यपि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य और काल द्रव्य इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय होने से उदासीन निमित्त कहे जाते हैं, तथा जीव द्रव्य इच्छावान और क्रियावान होने से, जीव में दोनों लिए इच्छावान और क्रियावान, और पुद्गल द्रव्य क्रियावान होने से प्रेरक निमित्त कहे जाते हैं। इंदु बेन आया ख्याल में? पुद्गल, अच्छा, तथापि कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही है। प्रेरक निमित्त हो या उदासीन निमित्त हो, कार्य की उत्पत्ति में वो उदासीन जैसे ही है, यानी धर्म द्रव्य जैसा जीव को नहीं चलाता, वो उदासीन निमित्त है। उसी प्रकार हमने निमित्त में भले उसके उदासीन और प्रेरक ऐसे भेद क्यों न किए हो, तथापि जब जब कार्य की उत्पत्ति होती है तब कोई भी प्रकार का निमित्त क्यों न हो, वो उदासीन निमित्त ही है, उदासीन निमित्त जैसा ही है, यानी वो जरा प्रेरक निमित्त है तो जरा कुछ उसमें ज्यादा मदद करता हो, ऐसी कोई बात नहीं। हमने खाली उसको समझाने के लिए, वो द्रव्य क्रिया वाला है कि इच्छा वाला, ये बताने के लिए उसको प्रेरक कहा। ऐसा नहीं कि वो प्रेरक निमित्त है तो थोड़ा ज्यादा मदद करता होगा, और उदासीन निमित्त भले न करे। निमित्त में खाली हमने डिफ्रेंशिएट किया, क्या डिफ्रेंशिएट किया कि यहाँ के उस द्रव्य में इच्छा वाला वो द्रव्य है कि नहीं, और क्रिया वाला द्रव्य का है कि नहीं, इतना ही बताया। उसका अर्थ ऐसा नहीं हुआ कि उसने थोड़ी तो प्रेरणा दी होगी। क्या लगता है? अध्यापक शिष्यों को बहुत प्रेरणा देकर समझाता है, उसको गुस्तप करता है और थोड़ा अच्छा पढ़ाता है, तो हमने क्या माना, देखो ये तो प्रेरणा देने वाला है ना, वो भी निमित्त है। कैसा है? जैसा धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है, वैसा ही ये इच्छा वाला और क्रिया वाला द्रव्य भी उदासीन निमित्त है। कार्य की उत्पत्ति में, वो अपना अपना कार्य करने में तो उपादान है, गुरु भी एक द्रव्य है, वो स्वयं अपना कार्य कर रहा है, वो ज्ञान भी हो रहा है, उसमें चारित्र गुण का विभाव रूप परिणमन भी हो रहा है ना, समझाने का भाव हो रहा है, वो भी वहाँ चल रहा है उसका, उसका अपना अपना उपादान है, परंतु शिष्य के कार्य में वो कुछ नहीं करता। शिष्य का जो ज्ञान गुण का परिणमन है वो उसके अपने द्रव्य शक्ति से हो रहा है, और उसी समय वैसा परिणमन होने में उसकी पर्याय शक्ति कार्य करेगी। नहीं, अध्यापक निमित्त है, निमित्त में ही दो डिफरेंसेस है। वो अपना खुद का उपादान है। हाँ, हाँ, अध्यापक को प्रेरक कहा। हाँ, उदासीन। हाँ, यानी शिष्य के कार्य की उत्पत्ति में वो उदासीन निमित्त है, यानी उदासीन के समान है। भले हम उसको प्रेरक कहे, फिर भी वो कैसा है, जैसे उदासीन निमित्त कुछ नहीं करता वैसे प्रेरक निमित्त भी कुछ नहीं करता। तो हमको उसमें प्रेरक और उदासीन में हम भेद नहीं करते तो भी चल जाता, परंतु अभी हाँ है ना, वो इच्छा वाला है इतना ही बताना है, वो क्रिया वाला है इतना ही बताना है। तो हमें जो लगता है इच्छा वाले, वो इच्छा वाले तो कार्य होता है, इच्छा करने वाले का तो कार्य होता है, हमारा तो नहीं होता है, ऐसा तो देखने में आता है। अरे वो भी कुछ नहीं करता, जो जो कार्य होता है उस पर्याय में उस पर्याय की योग्यता से ही होता है। ये हमारी खाली दृष्टि हटाना है ना निमित्तों के ऊपर से, उसका ज्ञान कराना है। सच्चा ज्ञान होते ही हमें पता चलता है जो जो कार्य होगा वो उस पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति से ही होगा, और बस वो निमित्त मात्र है, अन्य जो द्रव्य है वो निमित्त मात्र है, और ऐसे निमित्त होते है उसको बताते। तो किसी का कुछ देहांत हो गया तो हम अरे कैसे हुआ क्या हुआ, तो हमारी सारी दृष्टि कहाँ पर है, निमित्त पर। अरे वो डॉक्टर के पास नहीं ले जाना था, दूसरा डॉक्टर होता तो शायद बचा सकता था, ऐसा होता है ना। हमारे मन में क्या क्या बातें आती, तो उस जीव की उसी समय मरण वो वैसी पर्याय होनी थी। अरे इतना नहीं, उसका निमित्त भी निश्चित होता है, भगवान ने देखा है ना, क्योंकि उस समय उन द्रव्यों की, अनेक द्रव्यों की परिणति ऐसी होनी थी। क्यों, वो शरीर के परमाणु भी अन्य रूप परिणमित होने वाले थे, जीव का उनका संयोग भी छूटने वाला था, ये सारा ही निश्चित था। तो हम तो उसी पर उलझते रहते, अरे क्या हुआ कैसे हुआ क्या हुआ कैसे हुआ, इसको ऐसा कर नहीं करते तो, यदि ऐसा हम नहीं करते तो शायद टाल सकते थे इसको, ये ऐसी बातें होती रहती है। यद्यपि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय होने से उदासीन निमित्त कहे जाते हैं, तथा जीव द्रव्य इच्छावान और क्रियावान होने से एवं पुद्गल क्रियावान होने से प्रेरक निमित्त कहे जाते हैं, तथापि कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त, भले वो उदासीन हो या प्रेरक हो, धर्मासी काय के समान उदासीन ही है। यानी जैसे धर्माशिकाय उदासीन है, वैसे वो अध्यापक हो या कोई भी हो, वो सारे उदासीन निमित्त के समान ही है, मेरे कार्य में कुछ नहीं करते। अब प्रश्न, छात्रों के अध्ययन में अध्यापक की उपयोगिता से इनकार करना ठीक नहीं है। अरे भाई, देशना लब्धि के बिना तो किसी को सम्यक्त्व की प्राप्ति भी संभव नहीं है। चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का उपदेश पाकर तो भगवान महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी। उसका ही परिणाम है कि वह जीव आगे जाकर भगवान महावीर बना। आप उपदेश रूप निमित्त का निषेध क्यों करते हो? क्या प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि की देशना ही कार्यकारी होती है, उसी से किसी जीव को देशना मिलकर वो आगे पुरुषार्थ करे तो समय दर्शन प्राप्त करता है, तो आपको उसको नकार क्यों करते है? ऐसा प्रश्न वाले ने प्रश्न पूछा है। प्रश्नकर्ता क्या मानता है, ये निमित्त से ही इनकार कर रहे हैं। निमित्त से किसी ने इनकार नहीं किया है, निमित्त कार्य में कुछ कर दे इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो प्रश्न वाले ने क्या प्रश्न पूछा है कि आप उपदेश रूप निमित्त का निषेध क्यों करते हैं? उत्तर, उपदेश रूप निमित्त का निषेध कौन करता है? निमित्त के कर्तृत्व का निषेध अवश्य किया जाता है, यानी निमित्त ने कार्य किया, निमित्त ने सम्यक दर्शन प्राप्त कराया, इस बात का निषेध हो रहा है, निमित्त का निषेध नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो सब जानते हैं। और ऐसे ही सत्य है कि वो तो देशना के बिना किसी को सम्यक दर्शन नहीं होगा, अनादि मिथ्या दृष्टि जो है उसको कहीं कभी ना कभी वो देशना, भले अभी कुछ नहीं दिखाई देते हो, पूर्व में भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको देशना अवश्य मिली होती है, बिना देशना के किसी को भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो यहाँ निमित्त से इनकार नहीं किया जा रहा है, परंतु निमित्त कुछ कार्य करा देवे इस बात का निषेध है। इस दोनों में समझा डिफरेंस? ऐसा नहीं कि निमित्त को मान ही नहीं रहे, निमित्त होता है, ये पहले सिद्ध किया, निमित्त होता है, परंतु निमित्त से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कार्य की उत्पत्ति तो उपादान में होती है, उसकी अपनी योग्यता से होती है, परंतु सामने तब निमित्त होता है, यानी निमित्त का इनकार नहीं किया किसी ने। तो उपदेश रूप निमित्त का निषेध कौन करता है? निमित्त के कर्तृत्व का निषेध अवश्य किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस ख्याल में आया? दोनों में क्या अंतर है? होता है, बिल्कुल सही, निमित्त होता है परंतु कार्य में कुछ नहीं करता। गुरु का उपदेश होता है परंतु वो शिष्य को ज्ञान नहीं कराता। जिस प्रकार अध्यापक के बिना छात्रों का अध्ययन संभव नहीं है, उस प्रकार तो दीपक और पुस्तक के बिना भी अध्ययन संभव नहीं है। छात्रों के अध्ययन में अध्यापक, दीपक और पुस्तक सभी की उपयोगिता है। यदि ऐसा न होता तो दीपक क्यों जलाए जाते, पुस्तकें क्यों लिखी जाती और विश्वविद्यालयों की स्थापना भी क्यों होती, साधुओं में भी उपाध्याय का पद क्यों होता? ये जो साधुओं में पहले तो बहुत बड़े बड़े संघ होते थे, जैसे आचार्य पद पर कोई मुनि होते थे, वैसे उपाध्याय के पद पर कोई अन्य मुनि होते थे कि जिनको ये सारा 12 अंगों का ज्ञान होता था उनको, और वो अन्य मुनियों को भी पढ़ाते थे, स्वयं भी पढ़ना, अन्यों को भी पढ़ाना, बहुत बुद्धिशाली होते थे ना, इसलिए वो उपाध्याय का पद भी था। यदि गुरु के वो निमित्त भी नहीं होता तो उपाध्याय का पद भी क्यों होता, पढ़ाने वाले की भी क्या जरूरत थी? तो निमित्त होता अवश्य है, परंतु क्या कहते हैं, अनेक निमित्तों में वो एक निमित्त है, जैसे अध्यापक भी है, पुस्तक भी है, वो प्रकाश भी चाहिए, सारा है ना। बाई रोटी बनाती है तो वो बाई तो है, तो बाई है और सामने आटा है, बनाओ रोटी, तो कहते हैं मुझे वो परात चाहिए जिसमें वो आटा गूंथ लूं, और फिर वो नीचे के अडनी चाहिए, बेलन चाहिए, तवा चाहिए, सब है, चलो बनाओ, नहीं गैस गया आज, गैस के बिना नहीं रोटी बनेगी। तो इतने सारे निमित्त है कि नहीं है वहाँ? तो क्या कहते हैं कि अनेक सभी की उपयोगिता है, जैसे यहाँ दीपक पुस्तक सभी की उपयोगिता ली, वैसे वहाँ भी सभी निमित्तों की उपयोगिता है। यदि निमित्तों का निषेध किया जाता तो अवश्य ही उक्त प्रश्न खड़ा होता। यदि कोई निमित्तों का निषेध ही कर देता तो ऊपर का प्रश्न ठीक है, अरे भाई पर निमित्तों की सत्ता से इनकार कौन करता है? यानी कोई भी निमित्तों की सत्ता से इनकार नहीं करता है, निमित्तों को निमित्त होते हैं, ऐसा स्वीकार है, परंतु क्या स्वीकार नहीं है, वो कार्य करा दे परद्रव्य का, इससे इनकार है। पर यह भी तो विचारणीय है कि अकेले उपदेश से ही आत्महित होता होता तो उपदेश तो बहुत जीव सुनते हैं, सभी का हित क्यों नहीं हो जाता? समोसरण में तो बहुत सारे जीव होते हैं वहाँ, वो सभी का कल्याण क्यों नहीं होता? सभी क्यों नहीं मोक्ष चले जाते, केवल ज्ञानी क्यों नहीं होते? समोसरण में भी बैठे बैठे कोई जीव तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते, कोई चौथे गुणस्थान वाले, कोई पांचवे, कोई मुनि योग्य अपना पुरुषार्थ करते, मुनि बन जाते, इतना ही नहीं वही बैठे बैठे कोई केवल ज्ञान भी उत्पन्न कर लेते। वो समोसरण में बैठे हैं और वहाँ उपदेश सुनकर आत्मोन्मुख उपयोग लगा लिया, उनका उपयोग छूट गया भगवान की तरफ का, और वहाँ बैठे बैठे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी जो मुनि हो गए वही गृहस्थावस्था में। हाँ हाँ, केवल मुनि दशा वाले, ये जो मुनि दशा वाले नहीं, वो वहां दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेके वहां मुनि, क्योंकि बिना मुनि के केवल ज्ञान नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि केवल ज्ञान के सामने बैठे हैं, गृहस्थावस्था में है, अभी वस्त्र धारण किए हुए तो क्या हुआ, अंतरंग में चले गए और मोक्ष चले गए, ऐसा नहीं होता कभी। विधि पूर्वक दीक्षा लेनी होगी, वहां भी कोई मुनि हो जाते, कोई मुनि वहां सुनने के लिए जाते और कोई वहां जाने के बाद दीक्षा ले लेते। 12 मुनियों का अलग कोटा है वहां, हाँ उनका कक्ष है। देखो देवों का अलग है, ऐसा सारे अलग अलग है ना कोटे, क्लियंटों का अलग है, देवियों का अलग है, मनुष्यों का अलग है, वो आर्य का स्त्रिया, ये सारे अलग अलग कोठों में बैठे। तो जो मुनि है स्वयं तो मुनि अवस्था में जाएंगे, या वहां जाकर कोई मुनि दीक्षा धारण करेंगे, तो पहले तो विधि पूर्वक मुनि दीक्षा धारण करेंगे और फिर जब सामायिक में बैठेंगे यानी आत्मानुभव करेंगे, आत्मानुभव तो है ही, आत्मस्थिरता करेंगे, तब उनको सातवां गुण स्थान प्राप्त होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि पहले सवस्त्र अवस्था में सातवां प्राप्त होगा फिर छठे में आकर जाके दीक्षा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे कि कपड़े के साथ सातवां होता है तो बाद में दीक्षा लेने की क्या जरूरत, आवश्यकता है क्या? तो पहले द्रव्यलिंग होता है, द्रव्यलिंग ने जो शास्त्रों में बताया है मुनि योग्य, वो विधि पूर्वक उसका ग्रहण होता है उन व्रतों का। आचार्य जो है या साक्षात भगवान के पास वो ग्रहण करते कि इसका त्याग कर देते हैं और ये 28 मूल गुण पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं और प्रतिज्ञा पूर्वक उनका अंगीकार होता है व्रतों का। और भले उसका यानी यूटिलाइजेशन हो या नहीं हो, कोई अभी अंगीकार किया व्रत और वही बैठ गए तो उस व्रतों में तो सारा है ना, भोजन करे तो इस प्रकार से करे, चले तो इस प्रकार से करे, तो कोई वहीं बैठे बैठे केवल ज्ञान प्राप्त किया तो कहीं निकले ही नहीं भोजन के लिए बाहर, गमन किया ही नहीं और वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। परंतु पहले व्रत यानी प्रतिज्ञा पूर्वक अंगीकार तो किए थे, उसमें होता ना यदि गमन करे तो ऐसे, यदि भाषा बोले तो ऐसे, यानी इरिया समिति भाषा समिति सारे उनके, वो तो हमारा विषय हो चुका है शाम को। तो ये 28 मूल गुण पालन करने के व्रत अंगीकार किए जाते हैं। यानी इसको भी निमित्त में लेना, वहां ऐसा द्रव्य लिंग होता है, वो द्रव्य लिंग के कारण यहाँ भावलिंग नहीं प्रकट हुआ, परंतु जिसको जिसको भावलिंग प्रकट हुआ, जिसको जिसको सातवां गुणस्थान प्रकट होगा, उसके बाह्य में ऐसे व्रत होंगे ही, शरीर की ऐसी अवस्था होगी ही, निर्व्रत निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था ही बाह्य में होगी, ऐसा ही वहां निमित्त होगा। ऐसा ही वो निमित्त और उपादान का ऐसा सुमेल रहता है, पूरा मोक्ष मार्ग ऐसा है। जो जीव समय दर्शन प्रकट करेगा उसमें उसके निमित्त रूप से वहाँ सच्चे देव गुरु शास्त्र ही होंगे, उन्हीं के भक्ति का वहाँ उसको भाव होगा, उनकी प्रतीति होगी, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, जैसा है उपादेय वैसा श्रद्धान होगा ही। परंतु यह है इसलिए वहाँ कार्य हुआ ऐसा नहीं, परंतु जब जब समय दर्शन होता है तब तब ऐसे होता है। जब जब वो पांचवा गुणस्थान प्राप्त करेगा तो बाह्य में उसके वैसे व्रत श्रावक के योग्य व्रतों का अंगीकार होता है। व्रत लिए इसलिए यहाँ हुआ ऐसा नहीं है, परंतु बिना व्रत के उसके उतना पुरुषार्थ भी नहीं होगा, यानी जब जब इतना पुरुषार्थ होगा वहाँ निमित्त रूप से ऐसे उसके व्रत भी होंगे। जब जब यहाँ मुनि योग्य तीन कषाय का अभाव होगा तब तब वहाँ द्रव्यलिंग भी होगा, यानी शरीर की अवस्था भी ऐसी होगी, उसके राग परिणाम भी ऐसे होंगे और उसके अंतरंग स्थिरता ऐसी होगी। यानी वो तो बाद में आएगी कि एक गुण भी दूसरे गुण में कैसा निमित्तता होती है, जब यहाँ इतनी स्थिरता है, चारित्र इतना होगा तो उस प्रकार का ही राग निमित्त रूप से वहां होगा, उसका सबका आपस में सुमेल होता है। नहीं तो ऐसा मानना पड़ेगा, अरे हमारे क्या, हम तो भाव से शुद्ध है, हमको बाहर कपड़ा होगा क्या नहीं होगा, या ऐसी स्वच्छंदता नहीं रहती मोक्ष मार्ग में। इसलिए वो निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, जिसके साथ अभी सारा परिग्रह बाह्य में पड़ा हुआ है, वस्त्र हो या अन्य परिग्रह हो, और कोई अपने को आचार्य मुनि कहलावे अपने को भगवान कहलावे तो हम जान सकते ना, ये इसके निमित्तता में ऐसा, इसको ये तीन काल में हो नहीं सकता। कोई अपने को आचार्य कहे, भगवान कहे, रजनीश की बातें चलती थी ना, तो जो इसके बाह्य में ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसा वो अनाचार चल रहा है, वो तो वो भगवान क्या, वो समय दृष्टि भी नहीं हो सकता, कह सकते हैं ना इसको हम। तो ये निमित्त का भी क्यों ज्ञान कराया है, तो निमित्त की तरफ देखकर हम उसका वहाँ कौन सा कार्य हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, इसका भी हमें अनुमान हम लगा सकते हैं। वो सूचक होते, कल बात आई थी ये निमित्त, वो कार्य होगा नहीं होगा उसके सूचक है। तो यथा योग्य निमित्त वहाँ होते ही है। एक कक्षा में अनेक छात्र पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ाने वाला अध्यापक एक, पुस्तकें भी वही, दीपक भी वही, फिर भी सभी विद्वान तो नहीं बन जाते, सभी अपनी अपनी योग्यता अनुसार ही विद्वान बनते हैं। यदि निमित्त से ही कार्य होता माने, वो प्रेरक निमित्त तो है ऐसा अगर मानते हैं, तो प्रेरणा तो सबको दे रहे, वो तो सबको पढ़ा रहे, ऐसा नहीं कि किसी विद्यार्थी को अच्छा पढ़ा रहे और किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, उसको तो सारे, तो सारों को ही पढ़ा रहे ना, वो सब सुन रहे और सब एक जैसा ही सुन रहे, सबके सामने वही पुस्तक है, फिर भी किसी को ज्ञान में पकड़ में आता है, किसी को नहीं आता। तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि निमित्त के कारण कार्य नहीं होता। इसी प्रकार एक ही समोचरण में एक साथ अनेक जीव धर्मोपदेश सुनते हैं, परंतु सभी समय दृष्टि, व्रति या साधु तो नहीं हो जाते, सब अपने अपने पर्यायगत योग्यता अनुसार ही परिणमते हैं। द्रव्य शक्ति तो सबके पास है, सुनने वाले है ना, तो सबके पास द्रव्य शक्ति तो है, फिर भी कोई समय दृष्टि होते, कोई व्रति होती है, कोई साधु हो जाते हैं और कोई ऐसे ही रह जाते हैं, और कोई तो वहाँ वो उससे विपरीत परिणाम समोसा में छोड़कर चले जाते हैं और अन्य मतों की स्थापना भी कर देते हैं। महावीर का जो जब मारी जो पर्याय ने का वही उनमें तो पर्यायगत, तो यानी उनमें योग्यता तो थी ना, द्रव्य में तीर्थंकर बनने की योग्यता थी, परंतु उस समय बनने की नहीं थी, उसके पर्यायगत योग्यता अभी आने को काल था, टाइम था, तो तभी तो कैसे वहां से वो बाहर निकल गए और अन्य मतों की स्थापना कर दी, पाखंडी मतों की स्थापना कर दी। फिर अनेक पर्याय होते 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 अनेक भव जन्म मरण करते करते सिंह के पर्याय में आए, तब पर्यायगत योग्यता ऐसी कि समय दर्शन प्राप्त करे। तो अभी कहा इतने भयानक जंगल में कहा किसकी वो राह देखे निमित्तों की, तो वो चारण मुनि अपने स्वयं के कारण आकाश में गमन कर रहे थे और उनको देखकर उनको ऐसा भाव आया समझाने का, तब नीचे उतर कर आए और समझाए। कौन सी भाषा में समझाया होगा, सिंह की भाषा जानते थे वे, फिर भी उन्हें देखकर या उनकी कोई मुद्रा देखकर उन्होंने ऐसा उसका भाव सहज में, उसका पर्याय की योग्यता थी ना, तो क्षणिक उपादान से कार्य हुआ तो सामने निमित्त भी उपस्थित हो गए, उसकी राह नहीं देखनी पड़ती। तो हमारी मान्यता है अरे मेरे को कोई निमित्त भी दिख नहीं रहा, मेरा कार्य कैसा हुआ, कुछ नहीं। अतः यह सुनिश्चित ही है कि कार्य के प्रति नियामक कारण तो अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता ही है। हमारा अगर कार्य बिगड़ जाता है तो समझना ये पर्यायगत योग्यता ऐसी होती है, हमारा कार्य दूसरा किसी का कार्य, हम वहाँ कुछ मदद करना चाहते उसका कार्य हो जाए, देखो मैंने किया, मैंने किया, ये मैंने किया, ऐसे नहीं, उसकी पर्यायगत योग्यता थी तो हो गया और हम तो उदासीन है उसमें। तो अपने ऊपर वो सारा कर्तृत्व का अहंकार नहीं ले लेना, जरा विचार तो कीजिए कि भगवान महावीर के जीव का हित मारीचि के भव में ही क्यों नहीं हो गया, वहाँ तो सर्वोत्कृष्ट निमित्त अगर कहलाते आदिनाथ भगवान जो तीर्थंकर और उसके दादा और उनसे कार्य नहीं हुआ तो क्या वो बलवान नहीं थे, वो निमित्त होने में वो उनमें कोई पात्रता नहीं थी, अनेक जीवों के निमित्त होने हो गए और इनके क्यों नहीं हुए, क्या वहाँ सब निमित्तों की कमी थी। पिता चक्रवर्ती भरत वो भी समय दृष्टि और धर्म चक्र के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव बाबा, बाबा ने वो ग्रैंड फादर भगवान ऋषभदेव के समोचरण में उनका उपदेश सुनकर तो उसने विरोध भाव उत्पन्न किया था, मैं कैसा नहीं होता, मैं दूसरा तीर्थंकर होके दिखाऊंगा। वो कितना काल बताया था, 1 करोड़ सागर का, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, करोड़ भी नहीं, पहले तीर्थंकर और अंत के तीर्थंकर में इतना बड़ा अंतर, तो उन्होंने बोला नहीं मैं दूसरा तीर्थंकर होके दिखाऊंगा, क्योंकि वे भी जानते थे ना इतना बड़ा अंतर का अर्थ क्या होता है। इतना बड़ा अंतर यानी त्रस पर्याय भी नहीं रहेगी इतने साल तक। त्रस पर्याय जो है दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, उसमें यदि सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया तो 2000 सागर बीच जाने पर मैक्सिमम वो सबको मिले ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है एक ही भो मिले दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक और दोबारा वो एक इंद्रिय में चला जाए, तो एक इंद्रिय चला जाए एक इंद्रिय में तो उसका कोई भरोसा नहीं कब बाहर पड़े वहां। असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक वहां भटकना पड़ता है जो अनंत काल है। तो वो जानते थे कि ये नहीं कार्य होगा, और ये तो बता रहे एक कोड़ा कोड़ी सागर, एक करोड़ गुना एक करोड़ सागर, तो इसमें 2000 सागर कितने बार आएंगे। हाँ मगर कितना काल सारा उन्होंने कहाँ कहाँ बिताया, क्योंकि त्रस पर्याय तो इतनी लंबी चलती नहीं है। हाँ तो कितने बार निगोद में जन्म मरण किया, कितने बार अन्य अन्य पर्याय में गए, फिर जाकर वो आखिर के 10 हो जो हमको मालूम है। तो जो जैसी पर्यायगत योग्यता है ना, क्योंकि वो तो सुनकर उनको क्रोध आया, अरे मैं 24वां तीर्थंकर, तो अपने पर गर्व था ना, तो मैं अभी होके दिखाऊंगा। इसका अर्थ क्या हुआ, सर्वज्ञ की वाणी पर भरोसा नहीं है, सर्वज्ञ का स्वरूप जानते नहीं है। अकेला उनको क्रोध आए का मतलब ही है कि वो स्वरूप उसने निश्चित नहीं हुआ है, अभी निर्णय नहीं हुआ कि सर्वज्ञता होती क्या है। वैसा ही हुआ ना वो द्वीपायन के बारे में, अरे इसके हाथ जलेगी द्वारका जलेगी ऐसा होगी वैसा होगी सारा। तो सर्वज्ञ को इतना तो जानते, वो नहीं चाहते थे कि अपने कारण द्वारका जले, फिर भी उसको विरोध करने का भाव आया। उसका अर्थ क्या हुआ, वो सर्वज्ञता का स्वरूप निश्चित नहीं हुआ था मन में। भगवान ऋषभदेव के समोचरण में उनका उपदेश सुनकर तो उसने विरोध भाव उत्पन्न किया था, क्या उनके उपदेश में कोई कमी थी, क्या चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश उनसे भी अच्छा था। इसी से सिद्ध होता है कि जब पर्यायगत उपादान की तैयारी हो तब कार्य होता है, उस समय योग्य निमित्त भी होता ही है, उसे खोजने नहीं जाना पड़ता। कल बात करेंगे। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तकन वो सदा देखो।